श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् Thank you.
प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषुकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुहारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते।
पूछा है कि आपके कथनानुसार मन बुद्धि आत्मा सब भगवान को समर्पण कर दिया है, लेकिन मेरे सुख दुख तो वैसे के वैसे ही होते हैं, अब मैं क्या करूं?
तो सुख दुख को दूर करने के लिए समर्पण करना है क्या? समर्पण करना तो ईमानदारी है। सुख दुख मिटाने के लिए नहीं, अपना मानना है ये करवा शब्द है, ईमानदारी नहीं है, नहीं मानी है। मिली हुई चीजों को अपनी मान लेना ये बेईमानी, ये बेईमानी जब तक रहेगी तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो भगवान की मांग ली तो सुख दुख आपको क्यों होना चाहिए? तो केवल ऊपर से कहा है आपकी कन्या बड़ी हो जाती है उसकी चिंता होती है, पर घर पर अच्छा मिल गया आप संबंध कर देते हो फिर वो कन्या भी वही है आप भी वो चिंता होती है क्या? अब चिंता नहीं होती, आप भी हो कन्या आप भी वही है, चिंता क्यों नहीं होती? क्या भाई इस आपने घर गई अब सुन गया आप चिंता की? ऐसे भगवान को दे दिया तो घर की शरीर की कुटुंब की धन की घर की चिंता बनो कैसी? चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता का तो वो करो, हम क्यों चिंता करें? हमें क्यों तो खुश हो, हमें तो मौज करेंगे आनंद रहेंगे। स्वास्थ्य देने का केवल स्वांग है, हृदय से दिया नहीं, देने पर अपना कुछ रहता ही नहीं, फिर उसकी चिंता कैसे? चिंता आपके घर की होती है, दुनिया के घरों की क्यों नहीं होती? उसको अपना माना यही तो परिवार का फर्क है, उनको अपना नहीं मानते उनकी चिंता नहीं हो। तो सुख कैसे ही होता है, आपने भगवान के अर्पण कर दिया तो आप भगवान की उपासना कर दो, और बड़ा सुगम उपाय बताऊं, आपने अर्पण कर दिया अब सुख दुख आत्मा ये क्या हमारा है? हमें तो आपको दे दिया ये क्या आप बताएगा ये छोड़ो, फिर आ जाए सुख दुख भगवान के महाराज ये क्या हो गया, मैंने तो सुख दुख आपको दे दिया ये कहां से आप बताइए छोड़ दो, ऐसे कह दिया ये आगे किसने और
एक पूछते हैं कि सत्संग हमको बड़ा अच्छा लगता है, परंतु अब भय लग रहा है कि आपका सत्संग का समय तो एक दो दिन का ही है, अब उसके बाद घर के उसी व्यवहार में हम लोग फंस जाएंगे, तो अब हमारा आगे क्या होगा इस बात का भय लग रहा है, कोई उपाय?
भय मत करो, इतना दिन से सीखना है ये तो सत्संग में सीखना, और सीख करके अभी सत्संग व्यवहार में काम करना है, और पुस्तकों को पढ़ो जैसे सत्संग मिल सके वैसे करो, सत्संग थोड़ा दिन करनी चाहिए, थोड़ा दिन करना, सत्संग ज्यादा देर नहीं करनी, थोड़ा दिन करनी फिर काम करना फिर थोड़ा दिन करना,
ऐसा क्यों?
ऐसा करने से अच्छा रहता है, रोजाना करते रहने से खुराक हो जाती है, बेपरवाह हो जाती है, भूख फेर लेंगे तब सत्संग को, खूब भूख लेंगे तब, दो चार पांच दिन सत्संग करके फिर काम कर लेंगे, उसे पाचन अच्छा होता है। ज्यादा दिन मिलने से उसका पाचन नहीं होता, परिचित चीज हो जाती है। ये तो सुनते हैं, रोजा नहीं सुनते हैं क्या? इस बात से सत्संग बीच बीच में कर दिया। सत्संग पुस्तकों से भी होता है, संतों के संग से भी होता है, विचार से भी होता है। अपना कुछ नहीं है, इस विचार से भी सत्संग होता है। सत परमात्मा के साथ हमारा प्रेम है, वो सत्संग है। सदाचार है, वो सत्संग है। दुर्गुण दुराचारों का त्याग है, वो सत्संग है। असत का त्याग है, वो सत्संग है। सावधान रहो, सुनिए, वो काम में जाओ, फिर भय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना कि मन कम करता है, दूसरी एक मन में आई मन कम करता है। हमें सत्संग अच्छा लगता है तो ये हमारे पास रहे, ये क्यों आप उनके पास रहो? आपको सत्संग अच्छा लगता है, आप सत्संग करो, आप कौन मना करता है? तो मैं हरेक गांव में हरेक आदमी के पास कैसे रह सकता हूं? आप कहा भी रह सकते, तो अगर सत्संग करो, कोई काम करो, घर का साधन करो, हमारे अनुकूल बन जाए सब, यही तो गलती है, यही तो कुसंग है। हम उनके अनुकूल बन जाए, ये हमारे हाथ की बात है, ठीक बात है। दूसरे हमारे अनुकूल बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है, ठीक भी नहीं है, फायदा भी नहीं।
एक ने पूछा है कि आपने पितरों की गति के लिए गया जी के श्राद्ध की महिमा कही है, परंतु जहाँ पाश्चात्य देशों में गया जी है ही नहीं, पितर तो वहाँ भी होते हैं, उनका कल्याण कैसे होता है?
उनका कल्याण मुश्किल है, तो कल्याण का क्षेत्र भारतवर्ष माना, भारत आदि देख ले, जिनका भाग्य अच्छा होता है वो भारत में जन्म होता है। भारतवर्ष की बात अलग है। देखो, मनुष्य का सब शरीर है, परंतु इसके सद्भाव हृदय में पैदा होते हैं, तो आंग में क्यों नहीं होते? एक अंगुली में हो जा, तो ऐसे ये हृदय स्थानीय है भारतवर्ष, इसकी बहुत बड़ी महिमा। सूर्य की देखो तो यहाँ छह ऋतु होती है, किरण अधिक अलग चलती है, कहीं ठंडी ठंडी होगी तो कहीं गर्मी ही गर्मी होगी, कहीं वर्षा ही वर्षा होगी, कहीं एक ही होगा। पौधे भी भारतवर्ष में जितने ढंग के लगते हैं, अन्न जितने प्रकार के होता है, फल जितने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के विदेश में नहीं होते। यहाँ की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को लोग खराब समझने लग गए, और देशों में है ही नहीं, और देश अधूरा है, आपका देश पूरा है, पूर्ण है, सब बातें पूर्ण होती है। उन देशों में ऐसा उनमें उद्धार की बात नहीं, कल्याण की बात नहीं, भोग भूमि है, भोग भोगने के लिए है। वे भी उद्धार चाहे तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण चाहे तो उद्धार कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। कोई भी चाहे, पशु पक्षियों में भी ज्ञान नहीं है, पर कोई चाहे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान सबके लिए सत्य है, कोई प्राप्त कर ले। उन विदेशों में रहने वाले भी अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वहां मर्यादा नहीं है ऐसी, जैसे यहाँ सुचारू रूप से भारतवर्ष में है। अवतार जितने हुए सब भारतवर्ष में ही हुए, भगवान भी अवतार लेते तो यहाँ लेते, ये विशेष भारत की महिमा है।
कि हम लोग पाप तो नहीं करना चाहते, परंतु बंबई जैसी नगरी में रहते हैं और यहाँ पर झूठ कपट करने वाले लोगों के साथ ही हमारा व्यवहार होता है, रुपए की मुख्यता के कारण से हमको भी न चाहते हुए भी कभी कभी पाप कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, ऐसी स्थिति में हम हमारे मन में विचार पैदा होता है कि प्रभु के हाथ से हम पाप करते हैं कि हम हमारे द्वारा ही पाप करते हैं, क्या बात पूरी समझ
अपने से ही करते, भगवान नहीं करते पाप। भगवान अपने कानून से विरुद्ध काम कैसे करवाएंगे? पाप तो भगवान के कानून से विरुद्ध होने से होता है, भगवान अपने कानून से विरुद्ध काम नहीं करवाएंगे। अर्जुन ने ये पूछा है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में कि मनुष्य नहीं चाहता है फिर पाप क्यों कर बैठता है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि कामना है ना, धन मिल जाए, मान मिल जाए, भोग मिल जाए, ये जो भीतर की इच्छा है ये पाप करवानी करवा दी। और ये इच्छा मिट जाए, आज मैंने वह कहा था कि मिलने वाली वस्तु मिलेगी, वो पूर्व कर्मों के अनुसार मिलती है, अभी इच्छा करने से मिल जाए ऐसी नहीं है। उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, रात दिन खूब बेहद काम है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पुरुषार्थ करो, चेष्टा करो, असतता सततन कार्यं कर्म समा करो, करते भी कर्म हरदम करते रहो, पर मिल जाए ये चिंता मत करो। आज मिल जाएगी तो चिंता अरे काम करते नहीं, बड़ा भारी नुकसान है, भारतवर्ष कर्जदार हो गया है इस कारण से। लोग कहते हैं आज हरे को काम नहीं मिलता, वास्तव में ऐसी बात नहीं है, काम करने वाले ईमानदार आदमी नहीं मिलते, बेकारी बहुत है। बेकारी किसके लिए है? जो ठीक ईमानदार से काम नहीं करते उनके लिए बेकारी है, बेकारी नहीं है। हरेक क्षेत्र में अपना अपना काम करो, तो काम करना चाहिए, इच्छा नहीं है, कामना ने भी इतना धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, इधर आदर मिल जाए, इस कामना का त्याग करके सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो? भला उतना ही कर सकते हो जितना उनके लिखा है, अधिक आप कर नहीं सकते। आपने भाव को शुद्ध बना सकते, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव बनाने में तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप सुखी कर दोगे हाथ ही बात नहीं, माँ के दुख होता है, बच्चा बीमार हो जाता है, रातों सेकती है माँ और ये ठीक हो जाए ऐसी चिंता होती है। माँ के रोग न होने पर शरीर कमजोर हो जाता है माँ का, बालक की चिंता में, पर तो ठीक कर सकती है क्या? तो ठीक है कि अपने बच्चे को ही नहीं कर सकते, दुनिया मात्र का भला कैसे कर सकते? भाव अपना बदला, सबके सर्वे भवन सुखी ना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को किसी मात्र के दुख ना हो, ऐसा भाव बदल दो तो दुनिया तो सुखी होने वाली होगी, आपका कल्याण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। हरे को सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसे भगवान से कहो और मन में यही भाव रहो। क्या चाहिए? अपने पास जो धन है, हमारे पास बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ और अगर हित करो, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अरमाई, पर हित बस दिन के मन माई, तिनका जग दुर्लभ कसम आए। भगवान कहते हैं ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी की प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है उनको भगवान मिलते हैं, सगुण मिलते हैं, निर्गुण मिलते हैं। संसार का सुख उतना ही होगा, वो पदार्थ उतने ही मिले, कम नहीं मिले, सबके हित चाहने से अपने कम नहीं मिलेंगे, कम मिले तो भी लाभ होगा, अपने तंगी भोगेंगे तो भी लाभ होगा। बड़ी भारी तपस्या कला क्षय श्लाघ्य रोही वृद्धि, चंद्रमा की कला घटती है तो बढ़ने के लिए होती है, ऐसे आपकी शक्ति अगर उपकार में खर्च होती है तो बढ़ने के लिए होती है। इस चिंता मत, हरे को सुख कैसे हो, हरे का भला कैसे हो, हरे का कल्याण कैसे हो, हरे को आराम कैसे मिले, ऐसा भाव व्यापक बढ़ो तो आप उदार हो जाएंगे। उदारता है ये नष्ट नहीं होती है, कृपणता कंजूसी तो ठहरती नहीं है। कैसा ही कृपण हो अपने स्त्री बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, उदार हो जाता है। उदारता मिट नहीं सकती, कृपणता टिक नहीं सकती। दुर्गुण दुराचार्य बड़ा होती है, सदगुण सदाचार स्वतः स्वरूप है। दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सदगुण सदाचारों का संग्रह करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके कल्याण मंगल ही मंगल होता रहे। मां कष्ट दुख भाग हो, कोई किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भावना आप बनाओ। ये पाप वाला प्रश्न है ना, तो फिर भी हमारे सुख दुख क्यों होता है, पाप क्यों होता है, मिट जाए। केवल भाव आप बदल दो। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव विरुणा परशुराम बैठा पूंजी खोल। घाटा लग गया तो भाव गिर जाने से लगता है ना, तो वो भाव तो बाजार के अधीन है, ये आपके अधीन भक्ति अपना अपना भाव शुद्ध करो, अपना कल्याण हो जाएगा। सबके प्रति अपना भाव अच्छा बनाओ और सत्संग के द्वारा यही सीखा जाए, ये सीख ना होता। स्वार्थ भाव तो हरे में पड़ा ही है। एक बात याद आ गई, कई वर्षों की बात है, स्वर्गाश्रम में बड़ के नीचे सत्संग होता था। उस सत्संग में श्री गोविंदगा जी ने एक कहानी बताई कि दो भाई साथ साथ में थे और व्यापार करते थे, आपस में बड़ा स्नेह था, स्त्रियों के भी आपस में खटपट नहीं थी, भाइयों का भी प्रेम सब ठीक था। एक एक बालक हो गया, छोटे भाई गए बड़े भाई, तो एक दिन जब बाजार में गए तो आम आए थे, आम की फसल, नए आम आए थे, तो दो आम खरीद लिए, तो बच्चों को जाएंगे। बड़े भाई वो दो आम खरीद करके लाए, घर में है घुसते ही एक इस हाथ में आम, एक इस हाथ में आम। छोटा भाई स्नान घर में सत्संग कर रहा था, थोड़े गेंद खेले तो वो उधर फेंके, वो उधर फेंके, पिताजी आए ताऊ जी आए, दोनों दौड़े, हाथ में आम देखा तो दौड़े, दौड़े तो आम ऐसे दे दिया। छोटे भाई ने देखा ये क्या तंत्र किया, क्या तंत्र, यही दे देते सीधे, ऐसा क्यों किया। तो बहुत ऊपर चले गए और थोड़ा ने पूछा क्या दिया, नाम दिया, मेरे ताऊ जी ने दिया, मेरे पिताजी ने दिया, ला दे दिया। एक आम के थोड़ी सी चक्कर रही, काली काली चक्कर बनी हुई थी, वो अपने छोरे के हाथ में देने के, मैंने भाई इस बार ऐसा करना पड़ा, बढ़िया आम अपने छोरे के दिए, टक्कर वाला भाई के, तो टक्कर तो थोड़ी सी थी आम में, और भाई के टक्कर बहुत जोरदार लग गए। भगत मिला दे भाई जी ऐसे करो तो अपने अलग अलग हो जाओ, आप जो दे दोगे वो ले लो, मैं अब लड़ाई झगड़ा है नहीं, पंचायती है नहीं, जो दे दो। उनको आज तैयार ये बात कैसे सीढ़ी, ना स्त्रिया में लड़ाई है ना अपने आपस में लड़ाई है, अलग होने तेरे बात कैसे आई, कि तो बस आ गई, ऐसा ही मेरा मन करता। ज्यादा पूछा तो सच्ची सच्ची बात कह रहे, तो भाई जी आम दोनों के लिए आपने ऐसा हाथ क्यों लिया, तो वो तो था ही जोर भी भैया मेरी अकल निकल गई, तो अलग क्यों होते हो, जब मैं बैठा हूँ कमाता हूँ ठीक से काम करता हूँ, मेरी स्त्री काम करती है, इतने पर भी मेरे बालक में आपके बालक में फर्क है, अगर मेरा शरीर मर है तो मेरी स्त्री और बच्चों का आप पालन करोगे, मैं किस बात विश्वास करूं? अलग हो जाए तो कुछ पूंजित रह जाए कि मेरी स्त्री के पास अब ठिकाना है नहीं जीने का, अलग अलग हो गई। अब पूंजी कम हो गई, बंधन दोनों के हो गया, एक यहां दुकान पर रहते माल खरीदता, पूंजी भी ज्यादा थी, सब आधा आधा हो गया। छोटी सी बात के लिए थोड़ी टक्कर, एक पैसा भी फर्क नहीं। तो ये जो पक्षपात है अपने को मैं दे दूं ठीक, ये महान पतन करने वाली चीज है। तो ये कहानी शेर जी ने सुनाई। तो हम स्नान करने गंगा जी गए तो एक सज्जन बोला कि आज हमें शिक्षा मिल गई। क्या मिली? कि हमारे भाइयों के दोनों के घर हैं अलग अलग, तो उनके साग आदि लाना, चीज लाना, वो लाता हूं मैं ही, और फिर बंटवारा कर दे देता हूं, पैसे भी बांट लेते हैं। तो आलू लाता हूं तो आलू आधा आधा तो करते, बट बड़ा बड़ा तो मेरे तक रखते, छोटा छोटा आलू दे देते, ऐसा करता था। अब ऐसा नहीं करूंगा आज से, अब साग तो छोटे का भी हो जाए, बड़े का हो जाए, आलू बड़ा हो जाए, छोटे छोटा छोट आलू का साग तो हो ही जाए। परंतु ये मन में थे आज नहीं करेंगे। तो बोलो कितना प्रकाश मिला एक कहानी मात्र से, आत्म सुधर फिर क्या। अब मैं नहीं लूंगा ऐसा, अब जो चीज आए ठीक भाग से तुम खाते हो, पैसों का भी बता रहा, चीज को भी बता रहा। तो सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है, आदमी को होश आता है। नहीं तो स्वार्थ बुद्धि तो पशुओं में, पक्षियों में, सब नहीं है। तो स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना, ये मनुष्यता है। स्वार्थ तो पशु का ही है, उसमें क्या बन जाए, जब तक गधा एक को खुजालता है वो दोनों को खुजालता है, वो दुल्लते मारे तो वही दुल्लते मारे, तो दोनों में क्या फर्क। अपने तो विरुद्ध काम करने वालों की भी सेवा करनी है। उमा संत की भी है बड़ाई, मंद कर्त जो करे भलाई। अपनी भलाई करना, वो खराब काम करता है तो वही हम करेंगे, डबल खराबी होगी संसार में। तो सिंगली टाइम को क्यों कर, उसने कर दिया तो करो, अपने अच्छा काम करना। ऐसे सत्संग के द्वारा ये बातें सीख ही जाएंगी। ये जितने सीख लोगे, केवल याद मात्र नहीं सीख लोग, आचरण में ले आओगे, उतना दुख मिट जाएगा। खाने को अन्न भी मना हो, तंगी हो तो भी दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। बुखार में भी प्रसन्नता होगी, घाटे में भी प्रसन्नता होगी कि भगवान की मर्जी, बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है, भगवान ने मेरे को अपना लिया, बड़े आनंद की बात, तो दुख नहीं होगा। दुख होने में स्वार्थ बुद्धि है, पाप होने में स्वार्थ बुद्धि है, और स्वार्थ बुद्धि से लाभ किंचित मात्र नहीं होता। आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को, मन में कामना रखने से, स्वार्थ बुद्धि रखने से फर्क एक पैसा भी मिलता नहीं, अभी चीज तो मिलेगी नहीं, और दुख और पाप बाकी नहीं रहेगा। भोगों की, संग्रह की कामना रखने से दुख, संताप और पाप बाकी नहीं रहेगा, सब पाप आएंगे, सब दुख आएंगे, सब तरह की जलन होगी। और स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देने पर एक पैसा भी कम नहीं आएगा, आना जितना आएगा। स्वार्थ बुद्धि रह करके अपना पतन करना और कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बात का आप अध्ययन करें और आपकी शंका हो जाती है लिस्ट बनाकर लाकर के मेरे से पूछे कि कैसे हो गए, कैसे कुछ करके देखो। स्वार्थ बुद्धि है, अपना मतलब सिद्ध करने की बुद्धि है, ये बुद्धि किसी के साथ आपका प्रेम नहीं रहने देती। पेटू और चट्टू आपकी बुद्धि है, ऐसा विचार है, आप स्त्री के साथ एकता नहीं रख सकते, माँ बाप के साथ एकता नहीं रह सकते, भाई भुजाई के साथ एकता नहीं रह सकते, मित्रों के साथ और कुटुंबियों के साथ एकता नहीं रह सकते। न ज्ञान प्राप्त होता है, न भक्ति प्राप्त होती है, न योग प्राप्त होता है। इतनी महंगी चीज क्यों खरीदते हैं? काम आएगा, हमें धन हो जाए, हमें सुख हो जाए। ये आपने खरीद लिया, अब किसी के साथ एकता आपकी नहीं होगी, जहां जाओगे खटपट मचेगी। स्वार्थ बुद्धि का त्याग रहित करोगे तो जहां जाओगे वही आनंद हो। एक हमें कहानी याद आ गई, आजकल तो हम लोग है वो मोटरों पर, हवाई जहाजों पर, रेल पर चढ़ करके फिरते। अच्छे पहले वृद्ध संत होते थे, वे घूमते थे गांव में, दो चार पांच दिन किसी गांव में रहे, फिर चार कोस चले गए, उस गांव में दो चार दिन रहे, पांच दिन रहे, फिर चल दिया गया। ऐसे वो चलते थे और घर के गांव के लोग उनको बड़ा आदर देते थे, हमारे महाराज आ गए, बड़ा आनंद होता था, प्रसन्नता होती थी। जिस गांव में पहुंच गया, बाबा जी आए, बाबा जी आए, एक आनंद की लहर छा जाती। छोटे बच्चों के भी बाबा जी, बड़ों के भी बाबा जी, बूढ़ों के बाबा जी, सास के बाबा जी, बहू के बाबा जी, समझे बाबा जी आए, ऐसा लोग आनंद मनाते थे। एक दिन गांव में पहुंचे तो गांव में बड़ा लोग बहुत इकट्ठे हो गए, बहुत ही इकट्ठे हो गए कि महाराज गुरु ले आएंगे, सत्संग करेंगे, बड़ी अच्छी बात। एक माई आई, उसने कहा कि महाराज देखो आप अमुक गांव जाते हो ना, वहां हाँ तो आपका वो भगत है ना, आप ही वो सेवा करता आपका भगत है। हाँ भाई है तो सही, उसकी बेटी है ये मेरी बहू, लड़ती बहुत है मेरे, ये मेरे से लड़ती है, और आपकी उस भगत की बेटी है, ऐसी शिकायत कर दीजा। तो महाराज ने उस छोरी को बुलाया, और छोटी सी छोरी घूमती थी साथ बाबा जी के पोदी में, खेलती सामने, बड़ी हुई भी आदि बाबा जी दूर से हैं, उसको एक न बुलाया, एक बेटा है, बेटा तो सासू से लड़ती क्यों, ऐसा कहा तो वो तो रो पड़ी है, एकदम दर्द आंसू गए, बेचार हो बोलते बात क्या है, दुख क्या है कि मैं कोई काम करूं तो सासू को सुनाता ही नहीं, ये लड़ाई करती है। सासू तो कहते बहू लड़ती है, बहू कहते सासू लड़ती, लड़ाई कम से कम दो आदमी चाहिए जैसे होती, हजारों में लड़ सकते हैं, मगर दो से कम में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। अकेला कैसे करेगा बेटा, मिटाने में अकेला मिटा सकता है, लड़ने में दो चाहिए। उनकी लड़ाई तो बेटा तुम लड़ाई मत कि महाराज क्या करूं, सासू के तो पसंद आ गई नहीं मेरी बात, कुछ भी कर दो कितना ही कर दो, तो तुम्हारे को एक धंत्र पास है उसमें लड़ाई मिल जाएगी। तो महाराज पर श्रद्धा भक्ति थी, माँ बाप बड़े बूढ़े सब संतों को मानते थे, तो ये बाबा जी कह देंगे तुम्हारे काम सिद्ध हो जाए। उसका देवर था, उसको एक ताबीज लिया और कागज कलम लिया, लाकर दे दिया बाबा जी ने, एक लीर कागज की बनाई, उसने हम समेट करके ताबीज दे दिया कि देखो बेटा ये तुम गले बाल, तुम्हारे को जंत्र कर दिया, अब तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी। तो बस ठीक है, श्रद्धा थी बाबा जी ने कर दिया, अब लड़ाई कैसे होगी। दो बात का ख्याल रखना, इस यंत्र का परहेज है, एक तो सामान्य मत बोलना और एक कैसो काम कर देना, दो बात करनी पड़ेगी। तंत्र तो खराब हो मैं फिर बना दूंगा, पर ये व्रत तेरा टूट जाएगा मेरे से हाथ की बात नहीं, ये तो व्रत तेरे को रखना पड़ेगा, फिर दिन सिद्ध हो जाएगा, फिर दिन लड़ेगी। उसने कहा ठीक है महाराज, कितना दिन करना पड़ेगा, तो 12 महीना, 12 महीना बिल्कुल ठीक रहे, एक दिन के बोल गई तो उतने दिन पहले वाले गए, अब उस दिन से शुरू होगा महाराज। अब महाराज निगाह रखे विश्वास, क्या कहते हैं जो कह दो काम करे, सासू ने देखा बाबा जी करे क्या यंत्र है, बहू तो सुधर गई और सासू भी गाली नहीं दे। बहू ने देखा कि सासू भी सुधर गई है, यंत्र तो चमत्कारी है बाबा। अब प्रेम होने लगा। फिर कई महीनों के बाद फिर घूमते आ गए और सब गए वहां, कहते महाराज आपने निहाल कर दिया, हमारे घर की लड़ाई बचा दी। उस थोरी को बुलाया, तुम बेटा बोल कैसी बात है। तो महाराज एक दिन मैं तो बोल गई, सामने बोल गई। तो बेटा उस दिन के बाद बारे में न होगा। ठीक है महाराज कर लूंगी। अब देख लिया चमत्कार, यंत्र में चमत्कार है। तो डेढ़ दो वर्षों में बारह महीने पूरे हुए, वो पूरा हो तो सब घर वाले बड़े राजी हुए, घर की कलह मिट गई। तो बाबा जी ने कहा देखो तुम्हारे को यंत्र सिखाने किसी के काम पड़े तुम भी कर देना। ठीक है तो उस चलो तुम्हारे घर पर सर है, पर घर वालों के से बाहर का कोई आदमी ना रहे, घर घर वाले सब बाहर बच्चे से वो बाहर का नहीं। अब क्या उसको यंत्र को खोलो, ताबीज खोलो, खोले खोल कर वो पुर्जा निकालो, पुर्जा निकालो पढ़ो। उसमें पुर्जा निकाला तो उसमें लिखा था सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु को क्या। हमें क्या मतलब है, रोज ना लड़े तो हमारे क्या हुआ और कभी नहीं लड़े तो हमारे क्या है। कि महाराज इस यंत्र में इस वास्ते खोलाया कि यंत्र मंत्र में कभी पढ़ना मत ही, कोई ठगाई करेगा कि हम यंत्र कर देंगे मंत्र कर देंगे, ठग होता है ठग। इस बात किसी ने पढ़ना इस बात तुम्हारे को बताया, ये कोई मंत्र है। बात तो ये है कि सामने नहीं बोलना, कह जैसे कर देना। तो ये बहनों से कहना कि ये यंत्र सब ले लो आज, बड़ा कह जैसे काम करो और सामने मत बोलो, कैसे बढ़िया काम, घर की कला मिल जाए, लड़ाई मिल जाए, काम तो करना पड़ेगा ही, फिर सामने बोल के काम क्यों बिगाड़ो, सामने बोलो। बोलना ही हो, न्याय की बात भी हो तो उसी दम उठ जाओ काम करने के लिए, थोड़ी दूर जाकर फिर से आ जाओ। तो क्या बात है कि एक बात मन में आई आपको तो कह दू, हाँ कह दू, ऐसा काम करो ऐसा बिगड़ जाएगा, ऐसा काम गलती हो जाएगी। कह नहीं नहीं कर दो, फिर नहीं बोल फिर कर दो, और काम बिगड़ जाए तब वही कहे भाई तैने तो कह दिया है तो काम तो बिगड़ गया, तो आपका आदर हो जाएगा, आपकी बात का आदर हो जाएगा। इतने पर नहीं कहना मैं पहले कह दिया था, यूं मत कहना, ऐसा कह देना कि मैं कोई यंत्र यहां सो रही हूं, ये तो बात बताई ऐसी आई मन मैंने कह दी, कोई सब विचार हमारे ठीक ही होते, ऐसा कोई नियम नहीं, बात सच्ची है नियम नहीं। तो इस तरह के भाव है, ये सीख लो, ये सत्संग है, ऐसा आचरण हो जाए ये सत्संग। अब आप सत्संग करो रोजिना घर में करो, सही बड़ों के पग पढ़ो, उनका कहना मानो, सामने मत बोलो, निरादर मत करो, देखो घर में कलह मिटती है कि नहीं। सुबह शाम दोनों को नमस्कार करो, बड़ों के जिठानी हो बड़ी नंद हो सासू हो, रोजाना पग पढ़ो दोनों को सुबह शाम। तो खटपट होगी तो मिट जाएगी, नहीं होगी नहीं, हो जाएगी तो शाम पगा पड़े मिट जाएगी, कैसी बढ़िया बात है। एक ना खर्चा लगता है ना और मौज से बात हो जाती है। ऐसे संत होते थे उनके पास महाराज शिकायत जाया करती, ये राजगीर दूजर करते हैं ना मुकदमा, वो मुकदमा उन संतों के पास होता, लोग लड़ते लड़े मैं महाराज कह दू, अच्छा भाई महाराज मत कहना, अब कोई वे मारती तो होते ही और महाराज को मत कहना, ऐसा आपस में सूझ जाए महाराज बता देते ऐसा करो तुम ऐसा करो, बाबा ने कह दिया बस अब ऐसा करो। और वे संत निष्प्रिय थे, किसी से गुस्सा आते नहीं थे, ऊँगते थे सबका भला हो जाए, ये भाव उनके भीतर रहता था तो उनके द्वारा बड़ा भला होता था। तो ये आप ही अपना ऐसा विचार रहे हो, भाई और बहन सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, किसी का भी अपमान न हो, किसी की निंदा न हो, भला ही भला करो। तो आपकी भलाई भला हो जाएगा। ये सब का सब कामना के कारण से बाधा लगती है, सब काम ठीक नहीं होता। अपने कामना का त्याग कर दूसरों के हित की भावना रखो, वो सब काम ठीक हो जाएगा। तो ये सत्संग के द्वारा सीखना, ये सीखने की पाठशाला है सत्संग, है ना। अपने जो विभिन्न करते हैं कथाएं तो अनेक जगह होती है और उनमें बड़ी बड़ी बढ़िया बातें मिलती हैं, परंतु अपना सत्संग तो पाठशाला है, पढ़ाई है, पढ़ाई कर लो, बहुत प्रकाश मिलेगा, नई नई बातें स्वतः पैदा होगी मन में। आप साथ गुरु सीख लेते हैं व्यापार का, हिसाब का, तो गुरु आप ही कर लेते हैं। ऐसे सत्संग के द्वारा गुरु मिलते हैं, उनको आप अध्ययन कर लो, सो काम ठीक होने लगेगा। तो सत्संग आपके आचरण में आ जाएगा और उसके द्वारा दुनियाकार आपका बड़ा हित होगा। पहले कहीं कहीं स्वार्थ में बाधा लगे तो थोड़ा सह लेना। अरे खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया दारों को धूल में मिला देते, मिट्टी में मिला देते, तो खेती हो जाती। ऐसे आपका सुख है, मेरा सुख गया धूल में, बड़ा खेती हो जाएगी, बहुत अच्छा है। मिलन दो ठीक है, ऐसे आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, तो दुख मिट जाएगा। देखो दुख जो कहते हैं प्रारब्ध का फल है, प्रारब्ध का फल दुख नहीं है, पुराने कर्मों का फल दुख नहीं है, दुख है मूर्खता का फल। तो कर्मों का फल क्या है, परिस्थिति है, सुखदायी परिस्थिति बढ़ जाएगी, दुख अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, ये तो है कर्मों का फल। कहना आप सुखी दुखी हो जाओ, ये कर्मों का फल नहीं, ये तो केवल मूर्खता का फल है। मूर्खता मिटा दो, दुख मिट जाएगा, बोलो कितनी सस्ती बात। परिस्थिति खराब आ जाए तो भी दुख नहीं होगा। अरे भाई एक को अन्न नहीं मिलता और एक ने एकादशी का व्रत किया, भूखे दोनों हैं, परंतु व्रत किया वो दुखी है क्या? अरे अन्न नहीं मिला वो सुखी है, मिला नहीं अन्न इस बात चिंता होती है, अरे खाया नहीं अन्न, दोनों भूखे। तो त्याग रहे भीतर से, त्याग हो रहा, त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल शांति मिलती है। ये त्याग सीखा जाता है सत्संग के द्वारा, मनुष्यता आती है सत्संग के द्वारा। संसार के सुख दुख तो पशु पक्षियों को भी भोगने पड़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरों की सेवा कर, औरों को आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले, भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ खसुना, कोई दुर्लभ नहीं, भगवान तक मिल जाए। इस आदि भाव बना लो अपना भाव, फिर आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी। तो ये सीख लो कि सत्संग रोजाना कैसे हो, कोई बात नहीं, ये सीख लो, ये रोजाना साथ में रहेगी चीज। बाबा जी ने कह दिया कि दो ही बात याद रखो, इतनी बात है और क्या है। बड़ों के सामने में प्रणाम करो, बड़ों का कहना करो, छोटों को प्यार से समझाओ, नहीं समझे दुखी मत हो, अपने कह दो प्रेम से, अच्छी बात बता दो, सलाह दे दो, माने तो खुशी, न माने ज्यादा खुशी, ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए अधिक, क्योंकि हमने तो अपनी बारी निकाल ली, हमने कह दिया। और कहना माना मानेगा तो आपको प्रसन्न होना पड़ेगा, जितना कहना मानते हैं उनकी पराधीनता भोगनी पड़ती है। ठाकुर जी का भगवान का भी कहना माने गए तो भगत मेरे मुकुटमणि, उनको भी छोटा बनना पड़ेगा। कहना मनवाना अच्छा लगता है, नतीजा ऐसा नहीं है। कहना मानना, आज्ञा पालन करना बड़ी चीज है, उसे बड़े दर्द हो जाते। भगवान की आज्ञा से भगत मेरे मुकुटमणि हो जाए, तो अपने घर वालों का कहना मानो, मनवाने का आग्रह मत करो। अच्छी बात कह दी, माने तो मौज की बात, नहीं माने तो बहुत ही आनंद की बात। मोह नहीं होगा, कहना नहीं मानता उस मोह नहीं होता, कहना मानता तो मोह होता। बूढ़ी बूढ़ी माजियों को देखा है, बहू चली जाती है अपने पीहर, तो याद कर दे क्या करे, बहू से लगी सहसरी भी नहीं है क्या करे, मन नहीं लगता हमारा। वो काम करने वाली थी, थोड़ा खेलते थे, राजी होती माजी, और वो चली गई तो घाटा पड़ गया। अरे कहना माना नहीं, बहू लड़ाई करने वाली हो फिर चली जाए तो कैसे, अब शांति घर में कड़ाई मिट गई, बहू चली गई, अच्छी बात है। देखो स्वभाव है और क्या है, तो स्वभाव क्यों बिगाड़ो, स्वभाव शुद्ध बनाओ। माता पिता भाई उसे राजी रहे, दीरानी जेठानी सास ससुर में भी राजी रहे, स्वभाव अच्छा बनाओ तो सब भला होगा। ये है सत्संग, ये सत का संग है, सद्वस्तुओं को सद्भावों को सदाचरणों को धारण करो। तो सत्संग रोजा ना रहे अपने मन में पकड़ने बात है, भाई दूसरों का हित करना है। स्वार्थ निंद सकल जगमा ही सुपरे उपरे परिवार सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब रीति, हेत रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक। एक भगवान, एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, इनका दर्जा ऊंचा है, सबसे ऊंचे माने गए। अगर स्वार्थ करके काम करते हैं उनका दर्जा ऊंचा नहीं है। तो मनुष्य बने हो तो दर्जा हमारा कुछ भी रहो, अच्छे काम अपना पालन करना है। यदि बताई दे बात कि आप दुख पा रहे हो तो सुख के लिए थोड़े धर्म का पालन करना। मैं जो धर्म का पालन करता हूं वो सुख लिए करता है, सुख के लिए करता है, तो धर्म के तत्व को नहीं जान। धर्म तो मनुष्य का कर्तव्य है पालन करना चाहिए, सुख हो चाहे दुख हो, आपत हो चाहे संपत्ति आए, अपना काम ठीक तरह से करना है उत्साह पूर्वक। ये बात तो अपना काम ठीक तरह से करना है, ये सत्संग है, धारण करो, एक एक का हित करो, दोनों ठीक हो जाए। दो भाई थे भूखे आदमी, उनकी भोजन की सामग्री सब उठने रख, भोजन की सामग्री सब रख दी, यहां लकड़ी बांध दिया। अब क्यों हाथ हो नहीं भोजन खा रहे, ऐसे हाथ हो रही लकड़ी बांधी हुई है यहां। तो भोजन सामने सामग्री पड़ी, भूख लगी हुई, खा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि दो पत्तल परोस दिए, पत्तल तो परोस दे अनाज में, परोस दी वो तो उसके मुंह में दे, वो उसके मुंह में दे, दोनों का पेट भर गया। अब ऐसे नहीं हुआ, यू कह दिया तो ये ऐसे करना है, काम हो रहा है और उसी की सीधी बात है। तिजोरी की चाबी होती है यूं घुमा देती, बंद हो जाती है यूं कहते खुल जाती है, यूं होते सब बंद, और यूं करते सब सामने आ जाए, तो यूं मेरे को मिले, मेरे को मिले, चाबी बंद क्यों करते हुए सब माल बंद हो जाएगा, औरों को मिले औरों को मिले औरों को, सब माला मावल जाएगा, सब बोल हो जाएगा। ये अटकल सीख नहीं है, यही तो सत्संग करना, सत्संग के द्वारा ये युक्ति सीखना, फिर इसी को काम में लाओ, सुखी हो जाओ, जीवन सुखी हो जाओ। नहीं तो दुखी जीवन देखा ही है आपने, जितना स्वार्थ अधिक होता है उतनी उसकी बेइज्जती होती है, और दुख पाता है जितना उदार भाव होता है उतना सुख पाता है, संसार में यश होता है, वाह वाह करके सब लोग उसकी सेवा करने के तैयार होते हैं। तो उदारता धारण करो, मन में शुरू में समता और उदारता सबका हित कैसे हो, ये बात सर्वभूत हिते रता, कैसी बढ़िया बात है। इसको शंका हो तो पूछो बना, नहीं तो नहीं शंका हो तो लिस्ट बना कर ले आओ, फिर पूछो एकांत में पूछो बताए। ये गीता जी का सिद्धांत है, ये फैल होने का नहीं, ये बढ़िया ठीक सिद्ध होने वाला। बड़े उत्साह से काम करो, सबकी सेवा कैसे हो, सबको आराम कैसे, बोलो इसमें बाधा आती हो तो बताओ। पहले करना कितना आप सुखपूर्व करें, इतना करना दुख पा करके आसानी से सुखपूर्व करना है वो करो, और वो भी घर में से शुरू करो। औरों को देने में पैसा पास में नहीं है, कम है, तो घर में शुरू करो। घर में बाल बच्चों को देना ही पड़ता, घर में खर्चा लगता ही, घर में काम करना ही पड़ता, तो काम तो आप करो, आराम दूसरों को दो, बड़ाई दूसरों को दो, महिमा दूसरों को दो, खटो आप परिश्रम करो, देखो कैसा बढ़िया काम होता है, आप उसमें प्रेम हो जाएगा, गृहस्थ बड़ा सुख से होगा, और गृहस्थ सुख से होगा उसमें मुक्ति भी सुख से हो जाए, उसका कल्याण भी हो जाए, लोग और परलोक दोनों सुख में, सीधी सारी बात। और इस करने में कोई परतंत्र नहीं है, असमर्थ नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, इसमें अपात्र नहीं है। आप करना न चाहे तो उस बात एक अलग है, करना चाहो तो इसमें पराधीनता नहीं है, अपात्रता नहीं है, अयोग्यता नहीं है, इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। भाई पढ़े लिखे तो कर सकते, अपढ़ नहीं कर सकते, कुछ पढ़ाओ कुछ मत पढ़ाओ, इसका भाव अच्छा होता है तो भगवान राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तो ये भाव रहे आपका भीतर से, सबके सुख कर सबके अनुसार जितना कर सको, सुख पूर्व कर सको उतना, ज्यादा ज्यादा की जरूरत है, ठीक हो जाएगा। गलते है नहीं आपने तो इस करना शुरू हो जाए। अब और बोलो कोई बात है तो बोल रहा भाई, नहीं तो सुना हो गया।
कहते हैं सूत शब्द से कल्याण होता है क्या?
सूत शब्द से कल्याण होता, कल्याण होता है, देरी लगती होता था। सूत शब्द को मिलाकर किया जाए तो कई बस लग जाए, कल्याण होता जरूर, देरी से। राम कृपा करके आरती और जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम Thank you.
सीताराम 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 सीतारा